بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پرستت ہے۔ شروتاؤں، آج کے کارکرم کے آرمبھ میں آپ سورہ فصلت کی 30ویں سے لے کر 33ویں آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں عباس امام جمعہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياء من غفور رحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ نسندیہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا پالنہار ہے اور پھر اس پر درڑتا پوروک جمے رہے، ان پر فرشتے یہ سندیش لے کر اترتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور نہ ہی شوکا کل ہو، اور اس سورگ سے پرسن ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم سانسارک جیون میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور پرلے میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، اور یہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تمہیں اچھا ہوگی، और यहाँ तुम्हारे लिए वो सब कुछ होगा जिसकी तुम मांग करोगे। ये अत्यंत क्षमाशील और दयावान ईश्वर की ओर से तुम्हारे आतिथ्य का साधन है। और उस व्यक्ति से अच्छी बात किसकी हो सकती है जो लोगों को ईश्वर की ओर बुलाए, अच्छे कर्म करे और ये कहे कि निश्चित रूप से मैं उसके आज्ञाकारी बंदों में से हूँ।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, सभा में आप सभी का स्वागत है। आज गुरुवार है, फरवरी की 23, शाबान की 2 और इस्फंद माह की 4 तारीख। दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शुभ जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर हम आप सभी की सेवा में हार्दिक बधाई पेश करते हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है, पहले समाचार पेश किए जाएंगे, फिर राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम होगा, उसके उपरांत हम आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शुभ जन्म दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम सुनवाएंगे। हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आज की बात। तो दोस्तों, ये थी कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप मरियम मेहरदादी और कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। वरिष्ठ नेता ने कहा कि एक्सपीडियंसी काउंसिल के साथ शत्रुता इस्लामी व्यवस्था से शत्रुता जैसी है। पुतिन कहते हैं कि हम अपनी जमीन की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस ने रूस के विरुद्ध पश्चिम प्रतिबंधों को विफल बताया है। याइर लापिद का कहना है कि इसराइल 6 महीनों में विघटित हो जाएगा। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
वरिष्ठ नेता ने कहा है कि वरिष्ठ नेता का चयन करने वाली परिषद के साथ शत्रुता वास्तव में इस्लामी गणतंत्र के साथ खुली दुश्मनी के अर्थ में है। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के मजबूत आधार ने सारे ही अधिकारियों और धर्मगुरुओं के लिए उनकी जिम्मेदारियों को स्पष्ट कर दिया है। ईरान में वरिष्ठ नेता का चयन करने वाली परिषद के सदस्यों ने आज गुरुवार को इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता से भेंट की। इस भेंट में आयतुल्लाह रुज़्मा सैयद अली खामेनेई ने इस परिषद को इस्लाम और लोकतंत्र के मिश्रण का प्रतीक बताया। उन्होंने विभिन्न अवसरों पर जनता की अद्वितीय एवं निरंतर उपस्थिति की ओर संकेत करते हुए कहा, व्यवस्था का जनसमर्थन ऐसी राष्ट्रीय संपत्ति है जिसके माध्यम से ईश्वर ने धर्मगुरुओं और व्यवस्था के सारे ही अधिकारियों के लिए उनके दायित्वों को स्पष्ट कर दिया है। वरिष्ठ नेता ने कहा कि इस महत्वपूर्ण पूंजी में वृद्धि करने और उसकी सुरक्षा के लिए सबको मिलकर लगातार प्रयास करने चाहिए। आपने कहा कि वरिष्ठ नेता का चयन करने वाली परिषद शासन व्यवस्था की हर संस्था और परिषद से महत्वपूर्ण है। ये परिषद ही वरिष्ठ नेतृत्व का चयन करने वाली है और साथ ही अपनी देखरेख से वो नेतृत्व की परिस्थितियों को सुनिश्चित बनाती है।
ईरान के विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान ने अपने इराकी समकक्ष फुआद हुसैन से मुलाकात की और द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों विदेश मंत्रियों ने अपनी बात रखी और इराकी विदेश मंत्री ने कहा कि उनका देश संयुक्त सीमाओं की रक्षा पर कटिबद्ध है और आतंकियों को हरगिज अनुमति नहीं देगा कि वे पड़ोसियों के खिलाफ गतिविधियां करें। विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान ने द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर जोर दिया और कहा कि विजय के कमांडरों शहीद सुलेमानी और शहीद अबू महदी की हत्या के मामले पर कानूनी कार्रवाई जल्द पूरी होनी चाहिए।
रूस के राष्ट्रपति ने अपनी महत्वपूर्ण स्पीच में कहा था कि उनका देश इस समय यूक्रेन में अपनी ऐतिहासिक जमीन के लिए जंग लड़ रहा है। वहीं जंग को एक साल पूरा होने पर पूर्वी यूक्रेन में लड़ाई भीषण रूप ले चुकी है। पुतिन ने मॉस्को में बुधवार को भाषण देते हुए कहा था कि मुझे सैनिक नेतृत्व से आज पता चला है कि हमारी ऐतिहासिक जमीनों के भीतर हमारी लड़ाई जारी है। यूक्रेन के अधिकारी कहते हैं कि रूस बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर सकता है। उनका कहना है कि खारकीफ में रूसी सेना औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर हमले कर रही है। ये यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है।
एसोसिएटेड प्रेस ने ये बात मानी है कि पश्चिम द्वारा रूस पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध विफल रहे। यूक्रेन युद्ध को एक साल का समय पूरा होने के साथ ही एसोसिएटेड प्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बात स्वीकार की है कि रूस के विरुद्ध पश्चिम के प्रतिबंध कोई विशेष असर नहीं डाल पाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिबंध लगाते समय ये सोचा जा रहा था कि इससे रूस को नुकसान होगा और प्रतिबंध प्रभावी होंगे। रूस के विरुद्ध पश्चिम के प्रतिबंधों की विफलता को स्वीकार करते हुए एसोसिएटेड प्रेस ने इस रिपोर्ट में लिखा है कि अमरीकी राष्ट्रपति रबल को रूबल करने में कामयाब नहीं हो पाए, अर्थात रूसी करेंसी रूबल को रबल अर्थात कुड़ा बनाने में वे विफल रहे।
जाखारोवा ने कहा है कि मॉस्को को सूचित किए बिना बाइडेन यूक्रेन की यात्रा की हिम्मत नहीं कर सकते थे। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि मॉस्को को सूचित किए बिना और रूस से अनुमति लिए बिना जो बाइडेन कभी भी यूक्रेन की यात्रा नहीं कर पाते। जाखारोवा ने कहा कि अमरीकी राष्ट्रपति की यूक्रेन यात्रा केवल एक दिखावा था। उन्होंने कहा कि बाइडेन की यूक्रेन यात्रा के नाटक को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए बाइडेन की मुलाकात के समय खतरे के सायरन बजाए गए, हालांकि लोगों को पहले से ये बता दिया गया था कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है।
ज़ायनी शासन के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 6 महीनों में यह शासन विघटित हो जाएगा। याइर लापिद का कहना है कि अगले 6 महीनों में इसराइल अंदर से टूटकर टुकड़े हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा होने की स्थिति में इसराइली एक दूसरे से घृणा करने लगेंगे। ज़ायनी शासन के पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता लापिद के इस बयान से पहले वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख और राष्ट्रपति भी अपने भाषणों में ज़ायनी शासन में व्याप्त अशांति तथा संकट के गहरे होने पर इस शासन के विघटन की बात कह चुके हैं।
आतंकवाद से मुकाबले के विषय पर इस्लामाबाद और काबुल में समझौता हुआ है। पाकिस्तान के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस देश के रक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल अफगानिस्तान की यात्रा पर गया, जिसने राजधानी काबुल में तालिबान के नेताओं के साथ भेंटवार्ता की। पहले से निर्धारित न होने वाली इस यात्रा में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के साथ ISI के प्रमुख, अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार तथा विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके ये बताया है कि क्षेत्र में आतंकी चुनौतियों, विशेषकर TTP की कार्रवाइयों और दाइश के खतरे जैसे मुद्दों पर दोनों पक्षों ने विचार विमर्श किया। दोनों पक्षों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि आतंकवाद से निपटने के लिए परस्पर सहयोग की बहुत जरूरत है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शिष्टमंडलों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत बनाने पर भी सहमति बनी।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के संबंध में भारत की नीति और रुख पर विस्तार से बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार चीन को लेकर ना तो बचाव की मुद्रा में रहती है और ना ही चीन से डरती है। जयशंकर ने भारत की एक समाचार एजेंसी ANI से लंबी बातचीत की, जिसमें उन्होंने चीन के मसले पर भी विस्तार से मोदी सरकार का पक्ष रखा। चीन के मसले में मोदी सरकार पर जहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सहित विपक्ष हमलावर रहता है, वहीं भाजपा के अपने सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी कई बार बहुत तीखी टिप्पणियां की है। मोदी सरकार पर आरोप है कि वो LSC पर चीनी सेना की गतिविधियों के बारे में चुप्पी साधे हुए है और देश को इस बारे में सही जानकारियां देने के लिए तैयार नहीं है।
ताजिकिस्तान में गुरुवार की सुबह भीषण भूकंप आ गया जिसकी तीव्रता 7.3 रेक्टर थी। भूकंप ताजिकिस्तान के उस सीमावर्ती इलाके में आया जो चीन के सिनकियांग से मिलता है। चीनी मीडिया का कहना है कि सिनकियांग में भी 7.3 डिग्री के भूकंप के झटके महसूस किए गए।
और अंत में मुख्य समाचारों का सारांश एक बार फिर से सुन लें। वरिष्ठ नेता ने कहा है कि एक्सपीडियंसी काउंसिल के साथ शत्रुता इस्लामी व्यवस्था से शत्रुता जैसी है। पुतिन कहते हैं कि हम अपनी अपनी जमीन की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस ने रूस के विरुद्ध पश्चिम प्रतिबंधों को विफल बताया है। याहिर लापिद का कहना है कि इसराइल 6 महीनों में विघटित हो जाएगा। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे ईरानी विदेश मंत्री द्वारा अपनी इराक यात्रा पर उठाए गए अहम मुद्दों के बारे में और फिर बात करेंगे रूस और चीन के मजबूत होते रिश्तों से बेचैन होते अमरीका के बारे में।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन।
और अंत में चलेंगे भारत, जहां कश्मीर के सबसे दिग्गज राजनीतिक नेता और सांसद फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह इस राज के लोगों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार कर रही है।
जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े राजनीतिक दल
तो सबसे पहले बात करते हैं ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहयान के इराक दौरे की। अमीर अब्दुल्लाहयान ने इराकी अधिकारियों के साथ मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर जोर दिया और कहा कि विजय के कमांडरों शहीद सुलेमानी और शहीद अबू मेहदी की हत्या के मामले पर कानूनी कार्रवाई जल्द पूरी होनी चाहिए। इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं बगदाद से IRIB के संवाददाता जलाल खालिदी हमारे साथी अहमद अब्बास की आवाज में।
ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहयान के इराक यात्रा के दौरान सुरक्षा से जुड़े दो मुद्दे उठे, जिनमें एक मुद्दा इराकी कुर्दिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में आतंकी संगठनों की मौजूदगी का था। इराक के विदेश मंत्री फुआद हुसैन ने कहा कि इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि ईरान से मिलने वाली इराकी सीमा सुरक्षित रहे और इसे आतंकी संगठन प्रयोग न करने पाए। इराक की सरकार के इस फैसले का इराकी जनता ने भी स्वागत किया और उनका भी यही कहना था कि हमारी सीमाएं पड़ोसी देशों के खिलाफ इस्तेमाल न हों।
لا ينبغي ان يكون العراق منطلق لتهديد اي دوله من دول الجوار۔
عراقی ناگرک کا کہنا تھا کہ ہماری سیما کسی بھی دیش کے لیے خطرہ نہیں بننی چاہیے، پڑوسی دیشوں کی سرکشا ہماری بھی سرکشا سمجھی جاتی ہے۔
شہید ابو مہدی المہندس و شہید سردار حاج قاسم سلیمانی کہ در حادثه تروریستی آمریکایی در فرودگاه بین المللی بغداد به شهادت رسیدن. ما
ودیش منتری نے بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکہ کے آتنکی حملے میں شہید جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے سہیوگی و متر شہید ابو مہدی المہندس کی ہتیا کا مدعا اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کو ضرور اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے اور ہتھیاروں کو ان کی سزا ضرور ملنی چاہیے اور اس معاملے میں قانونی کارروائی پوری ہونی چاہیے اور دوشیوں کو سزا ملنی چاہیے. اس وشے کو عراق کے راشٹرپتی اور عراق کے پردھان منتری دونوں سے ہونے والی ملاقاتوں میں اٹھایا گیا. یہ مسئلہ اتنا مہتوپورن ہے کہ عراقی ناگرک بھی چاہتے ہیں کہ اس پر ضرور کارروائی ہونی چاہیے.
عدم نسیان هذا الملف المهم وهو ملف مقتل الحاجين الشهيدين.
عراقی ناگرک کا کہنا تھا کہ ان دونوں شہیدوں کی ہتیا کا مسئلہ فراموش نہیں کیا جانا چاہیے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس میں ضرور جلد سے جلد دوشیوں کو سزا دی جائے اور کٹگھرے میں کھڑا کیا جائے. ایران کے ودیش منتری کا عراق دورہ ایسے حالات میں ہوا ہے کہ عراق کی سرکار ان دنوں تہران اور ریاض کے بیچ تناؤ کو کم کرنے کے لیے مدھیستا کی بھومکا نبھا رہی ہے جس کا بڑا سواگت کیا جا رہا ہے. اسلامی گڑتنتر ایران کے ودیش منتری نے اس دورے میں یہ بھی کہا کہ عراق کی پرگتی، عراق کی سرکشا اور اس کی مضبوطی کا ایران کی اور سے سمرتھن جاری رہے گا. بغداد سے آئی آر آئی بی کے لیے جلال خالدی کی رپورٹ.
اور اب چرچا کرتے ہیں چین اور روس کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے امریکہ کی. حالیہ کچھ ورشوں میں وش کی دو بڑی اور مہتوپورن شکتیوں کے روپ میں روس اور چین نے سہیوگ میں وستار کے لیے کچھ مہتوپورن قدم اٹھائے ہیں اور امریکہ کے ایک پکشی رویے پر لگام لگانے کی کوشش کی ہے. وہیں امریکہ ان دونوں دیشوں کے بیچ بڑھتے تال میل کو لے کر چنتت ہے. اس بارے میں وستار سے ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی سید میسم.
روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتن نے چین کی ستاداری پارٹی کی ودیش معاملوں کی کیندریہ سمیتی کے نیدیشک وانگ یی سے ملاقات میں کہا ہے کہ روس اور چین کے بیچ سمبندھ یوجنا کے انوسار وکست ہو رہے ہیں اور اب یہ نئی اونچائیوں پر پہنچ گئے ہیں. اس ملاقات میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ انتراشٹریہ استھرتا کے لیے ماسکو اور بیجنگ کے بیچ سہیوگ ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ 2024 تک روس اور چین کے بیچ ویاپار 200 بلین ڈالر تک پہنچ سکتا ہے. پوتن نے انتراشٹریہ سمبندھوں کو لے کر بھی چین کے سہیوگ کے پرتی آبھار ویکت کیا جو اس سمے بہت جٹل استھتی میں ہیں. وشو کی دو بڑی اور مہتوپورن شکتیوں کے روپ میں روس اور چین نے سہیوگ میں وستار کے لیے کچھ مہتوپورن قدم اٹھائے ہیں اور امریکہ کے ایک پکشیہ رویے پر لگام لگانے کی کوشش کی ہے. روس اور چین نئی وشو ویوستھا میں بہو پکشیہ درشٹیکون پر زور دے رہے ہیں. ماسکو اور بیجنگ کا ماننا ہے کہ انتراشٹریہ گھٹنا کرم اور ویشوک ویوستھا کی واسوکتا اس بات کی گواہ ہے کہ وشو بہو پکشیتا کی اور بڑھ رہا ہے, جبکہ امریکہ آج بھی ایک پکشیہ والا وہی پرانا راگ الاپ رہا ہے اور وہ آج بھی خود کو ویشوک پولیس کی بھومکا میں دیکھ رہا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ امریکی ادھیکاریوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وشو گھٹنا کرموں پر واشنگٹن کی پکڑ ڈھیلی پڑ رہی ہے, یہاں تک کہ اس کے پارمپرک سہیوگی بھی نئی پرستھتیوں کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں. نئی ابھرتی ویشوک ویوستھا کو روس یوکرین یدھ نے تیزی پردان کر دی ہے اور اب استھتی انومان سے کہیں زیادہ تیزی سے بدل رہی ہے. امریکہ اور پشچم نے اس یدھ میں روس کو ہرانے کے لیے ہیڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے اور وہ یوکرین کی ہر سمبھو سہایتا کر رہے ہیں. اس کا ایک مہتوپورن کارن یہ ہے کہ امریکہ نے اس یدھ میں اپنی ساکھ کو داؤں پر لگا دیا ہے, اس لیے اس یدھ میں اگر کسی بھی طرح سے روس کی جیت ہوتی ہے تو یہ امریکہ کی اکیلی وشو شکتی کے بھرم کو چکنا چور کر دے گی. امریکہ اور یورپی دیش بیجنگ اور ماسکو کے بیچ سہیوگ کے سب سے بڑے ویروجی ہیں. امریکی ودیش منتری اینٹونی بلنکن نے حال ہی میں دعویٰ کیا تھا کہ چین روس کو ہتھیار اور گولہ بارود دینے کی یوجنا بنا رہا ہے. اسی کے ساتھ انہوں نے چین کو اس کے لیے گمبھیر پریڑام بھگتنے تک کی دھمکی دے ڈالی. حالانکہ بلنکن یہ بھول رہے ہیں کہ ان کی یہ دھمکیاں چینی ادھیکاریوں کے لیے گیدڑ بھبکی سے زیادہ کچھ نہیں ہیں اور چین اپنے راشٹریہ ہتوں کے مطابق بنائی جانے والی نیتیوں سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے.
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا. بھارت پر شاسد کشمیر کی نیشنل کانفرنس پارٹی کے پرمکھ فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ کیندر سرکار کشمیر کے لوگوں کو غلام دیکھنا چاہتی ہے، یہی کارن ہے نہ ہی چناؤ کرائے جا رہے ہیں اور نہ ہی راج کا درجہ واپس کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں وستار سے جانکاری دے رہے ہیں شری نگر سے ہمارے سمباددتا سپت محمد حسن۔
جموں کشمیر کے سب سے بڑے راجنیتک دل نیشنل کانفرنس کے ادھیکش اور لوک سبھا سانسد ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے نئی دہلی پر آروپ لگایا ہے کہ وہ جموں کشمیر کے لوگوں کو غلام دیکھنا چاہتی ہے، اسی لیے یہاں پر نہ ہی ودھان سبھا کے چناؤ اور نہ ہی جموں کشمیر کو راجیہ کا درجہ واپس کیا جا رہا ہے۔ سری نگر میں پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئے دیوس نئے قانون لائے جا رہے ہیں اور ہمیں یہ باور کیا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے غلام ناگرک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو نیتیاں 5 اگست 2019 کے بعد نئی دہلی کی موجودہ رجیم نے اپنائی ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ لوگ ابھی اسے دیکھ رہے ہیں اور جو اس کا ورودھ ایک مرتبہ آرمبھ ہوگا تو پھر اس کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی دہلی نے ایگریسو پالیسی کے تحت کشمیریوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ آپ ایک غلام قوم ہو اور اپنی بات کہنے کی آپ کو انومتی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا
سوال اس بات کا ہے کہ اگر گورنمنٹ آف انڈیا کہتی ہے کہ یہاں سچویشن نارمل ہے، انہوں نے ڈی لمیٹیشن بھی کر دی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ یہاں الیکشن نہیں ہو رہا ہے؟ جبکہ باقی ریاستوں میں الیکشن ہو رہا تو یہاں بھی الیکشن ہونا چاہیے۔ یہاں کیوں ایک ایل جی صاحب کو بٹھا دیا، وہ ساری چیز کا مالک بیٹھا ہوا ہے، خود سوچیے۔ دیکھیے کشمیری میں کہتے ہیں گنز نس، اب یہ آرڈر پہ آرڈر دیتے ہیں، ہمیں اس کی کوئی کمی نہیں ہے، آرڈر دیتے رہے ہیں، ہم لوگ بس چپ چاپ ان کے آرڈروں کو دیکھ رہے ہیں، اور کیا ہے، ایک غلام قوم کیا کرے گی، بیٹھے دیکھ رہے ہیں تماشا۔
کیا
وہ اللہ جانے وہ ان کی پالیسی کیا ہے، پہلے تو انہیں وہ اپنے وہ نکالے توڑنے کے، مکان توڑنے کے لیے نکالے ان لوگوں نے، غریبوں کا نقصان کیا، جب وہ بنے تھے اس وقت کیوں نہیں ان نے ان کو بند کیا، بتائیے مجھے، بنانے کے بعد، سب تیار ہونے کے بعد، اتنا لون لینے کے بعد، بینکوں سے لون لیا، بتائیے مجھے وہ کیسے دیا ان کو، یہ سوال حیرانی مجھے اس بات کی ہے کہ توڑنا بہت آسان ہے، بنانا بہت مشکل ہے، اور جو ان نے کیا ان نے غلط کیا، بہت غلط کیا، ان کو اسٹیٹ ہوڈ دینا ہی نہیں ہے، یہ سب تماشا ہے، ہم لوگوں کو اور دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں، انہیں یہی چلی چیز چلانی ہے، کوئی سیٹ اوٹ کا معاملہ نہیں ہے، دیں گے نہیں۔
یہاں یہ بات الیکھنی ہے کہ ایک طرف جموں کشمیر کی ایل جی پرشاسن یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جموں کشمیر میں استھتی سامان ہو گئی ہے اور اب ان کے انوسار جو جموں کشمیر کے ایل جی ہیں، جموں کشمیر وشو کے لیے سوئٹزرلینڈ بن گیا ہے، پرنتو زمینی استر پر یہاں کیا استھتی پائی جا رہی ہے اس بارے میں راجنیتک دلوں کا ٹوٹلی الگ ہی پرسپیکٹو ہے۔ تمام مین اسٹریم دلوں کا کہنا ہے کہ استھتی میں کسی بھی سمے کوئی بھی اگلی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اسی کے سنکیت دیتے ہوئے کہا کہ جو نیتیاں نئی دہلی نے کشمیر کے حوالے سے اپنائی ہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ میں اب بھی ان سے ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا کرتا ہوں کہ وہ جموں کشمیر کے ناگرکوں کو دل سے لگانے کا کوشش کریں، جو کوششیں وہ کر رہے ہیں وہ کبھی بھی سفل نہیں ہوں گی۔ سپت محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
دوستوں، راجنیتک چرچا کا یہ دینک کارکرم اب یہیں سماپت ہوتا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستوں، آپ کو کارکرم کیسا لگا اس بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ جیسا کہ ہم نے کارکرم کے آرمبھ میں بتایا، آج امام حسین علیہ السلام کے شبھ جنم دیوس کی پورو سندھیا ہے۔ پرستت ہے اس بارے میں ایک وشیش کارکرم۔
دوستو، امام حسین کے شبھ جنم دیوس پر ایک وشیش کارکرم کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور اختر رضوی کا سلام سویکار کیجیے۔
تین شعبان سن چوتھی ہجری کو امام حسین علیہ السلام مدینہ شہر میں پیدا ہوئے۔ پیغمبر اسلام نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کی دوسری سنتان کا نام حسین رکھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام سے ایک خاص لگاؤ رکھتے تھے اور انہیں بہت پیار کرتے تھے۔ ان کے اس لگاؤ کو اس حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔
آج امام حسین کے نام کی گونج پوری دنیا میں ہے، اور جو بھی ان کو سنتا ہے کربلا میں ان کے امر آندولن کو یاد کرتا ہے اور اس سے انسانیت اور آزادی کا پاٹھ سیکھتا ہے۔ امام حسین کو حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت پیغمبر اسلام جیسے مہان ایشوری دوتوں کا اتراधिकारी بتایا گیا ہے۔ انہیں یہ وششٹتا حضرت فاطمہ، حضرت علی اور پیغمبر اسلام جیسی ہستیوں کی چھتر چھایا میں حاصل ہوئی۔ امام حسین کا 57 ورش کا جیون ان کی مہان آتما اور چرتر کو درشاتا ہے۔
اتہاس میں امام حسین علیہ السلام کے چرتر کا ورنن کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ وہ دیالو، ادار اور مہمان نواز تھے۔ اپنے رشتہ داروں کا خاص خیال رکھتے تھے، مانگنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، قرض داروں کا قرض چکا دیا کرتے تھے، اناتھوں کے لیے ان کے من میں دیا اور ہمدردی تھی، نردھنوں اور پیڑتوں کی مدد کرتے تھے، بہت ادھک دان دیتے تھے، غریبوں اور نردھنوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، ایشور کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، ان کی ویرتا کے ہر کوئی گنگاتا تھا، یدھ کے میدان میں دھرن اور نڈر تھے، دھرن اچھا شکتی اور مضبوط ارادہ رکھتے تھے، ان کے وچار گیان کا سروت تھے اور ان میں ستیہ کو ویکت کرنے کی آدیوتی شکتی تھی۔
بھلائی کی سفارش کرنا اور برائی سے روکنا امام حسین کے جیون کا ایک سب سے اسپشٹ آیام ہے، جس کا سب سے اسپشٹ ادھارن بنی امیہ کے اتیاچار پورن شاسن کے خلاف پرتیرود کرنا اور سمست برائیوں سے لپت یزید جیسے شاسن کی بیعت کرنے سے انکار کرنا تھا۔ ایشور نے اپنے دوتوں کو بھلائی کی سفارش کرنے اور برائیوں سے روکنے کا آدیش دیا ہے۔ بھلائی کی سفارش اور برائی سے روکنے کا ایک ادھارن نیائے کی استھاپنا اور اتیاچار کا ورودھ ہے۔ نیائے ایشوری آدیش ہے جو جیون کے سبھی آیاموں پر آدھارت ہے، لیکن اس کا سب سے اسپشٹ ادھارن ساماجک نیائے اور لوگوں کے ادھیکاروں کا پالن ہے، اور اسی کارن اگر کوئی شاسک اتیاچاری ہے تو اس کے خلاف سنگھرش کرنا چاہیے۔
امام حسین علیہ السلام کے نکٹ سمان جنک اور گوروپورن جیون ارتھ پورن ایوم سندر ہے۔ جیون ایشور کی اور سے وردان ہے اور جیون کا ادھیکار سمست انسانوں کے لیے سرکشت کیا گیا ہے۔ کسی بھی طرح سے لوگوں کے جیون کو خطرے میں ڈالنا نندنیہ ہے، اور اگر کسی پر کوئی اتیاچار ہو رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظلم اور اتیاچار کے خلاف آواز اٹھائے۔ قرآن کہتا ہے جو کوئی ایسا نہیں کرتا وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ قرآن کے سورہ نساء کی 97 آیت میں آیا ہے کہ فرشتے پیڑتوں سے پوچھیں گے لوکک جیون میں تمہاری استھتی کیا تھی، وہ جواب دیں گے ہم زمین پر کمزور تھے۔ وہ پوچھیں گے کیا ایشور کی دھرتی وشال نہیں تھی تاکہ کہیں دوسری جگہ پلائن کر جاتے، اس لیے وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا ٹھکانہ نرک ہے اور ان کا بھوشیہ برا ہے۔
امام حسین کے پرتیرودھ نے مانویہ سماج میں راجنیتک ایوم ساماجک جاگرکتا اور کرانتی اتپن کر دی، جس کے بعد اسلامی جگت میں ظلم اور اتیاچار کے خلاف پرتیرودھ کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ کربلا میں امام حسین کی کرانتی نے انتہین آندولنوں کو جنم دیا، وشیش روپ سے اسلامی جگت میں ظالم ایوم اتیاچاری شاسکوں کے خلاف آندولنوں کا سلسلہ کربلا کی لڑائی کے اسپشٹ ایوم چمتکاری پریناموں میں سے ایک ہے۔
Thank you.
दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहि सलाम के प्रतिरोध को एक दीर्घकालिक और एक ऐसे प्रतिरोध के रूप में देखना चाहिए जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया है और रहती दुनिया तक हर इंसाफ पसंद इंसान इससे प्रभावित होकर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता रहेगा। दुनिया के कई देशों में लोगों ने करबला की घटना से प्रेरित होकर अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंका और न्याय के शासन की स्थापना की। इसी कारण महान बुद्धिजीवी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने नतमस्तक होते हैं। ईसाई बुद्धिजीवी एंटन बर्रा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के प्रतिरोध की महानता का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि अगर हुसैन हम में से होते तो हर जगह उनका झंडा फहराते और गांव-गांव में उनका मिंबर बनाते और लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर ईसाई धर्म की ओर आमंत्रित करते।
हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक ऐसा दर्पण है जिनमें समस्त ईश्वरीय दूतों की झलक देखी जा सकती है। ईश्वर ने उन्हें पूरी दुनिया के लोगों के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी प्रदान की थी, इसी वजह से ईश्वरीय दूतों का महान चरित्र और स्वभाव उनमें झलकता है। उन्हें दुनिया में न्याय और इंसाफ की स्थापना करने और जुल्म और भेदभाव को मिटाने की जिम्मेदारी दी गई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ईश्वरीय दूतों के गुणों के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए ज्ञान, विज्ञान, प्रेम, साहस, उदारता, धैर्य और विनम्रता जैसे गुणों में सभी दूतों के समान हैं।
फ्रांसीसी इस्लामविद हेनरी कॉर्बिन कहते हैं कि मेरा मानना है कि इस्लाम एकमात्र ऐसा धर्म है जिसने ईश्वर और लोगों के बीच ईश्वरीय मार्गदर्शन के संबंध को हमेशा जीवित रखा है और नेतृत्व के विषय को लगातार स्थापित किए रखा। यहूदी धर्म ने ईश्वर और लोगों के बीच के वास्तविक संबंध को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ख़त्म कर दिया और उसके बाद हजरत ईसा और हजरत पैगंबर मोहम्मद पर विश्वास नहीं किया। परिणाम स्वरूप ईश्वर और सृष्टि के बीच का संबंध टूट गया। ईसाई धर्म भी हजरत ईसा तक आकर रुक गया। इस्लाम में और विशेष रूप से शिया मत में हालांकि पैगंबर इस्लाम की नबूवत के साथ ईश्वर और इंसानों के बीच वही का या आकाशवाणी का सिलसिला टूट गया, लेकिन विलायत या अंतिम ईश्वरीय दूत के उत्तराधिकारी का सिलसिला जारी रहा। यह मार्गदर्शन की निरंतरता है जो ईश्वरीय दूत के बाद भी हमेशा के लिए जारी रहेगी।
इस तरह से इस्लाम में आध्यात्म स्थायी और अमर है। यही वजह है कि इस्लामी समुदाय अवांछित परिवर्तनों का दृढ़ता से मुकाबला करते हैं जो उनके लिए खतरा बन सकते हैं। तत्कालीन घटनाओं पर एक नज़र डालने से स्पष्ट हो जाता है कि तत्कालीन इस्लामी शासन के भटक जाने और समाज के अपनी जड़ों से कट जाने के कारण इमाम हुसैन के सामने आंदोलन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ये एक सच्चाई है जिसने पैगंबर इस्लाम के बाद 5 दशकों में धीरे धीरे ये रूप धारण किया। लोगों ने पैगंबर इस्लाम की सिफारिशों को भुला दिया था और उनके परिजनों यानी अहले बैत को अलग थलग कर दिया था। इस्लामी समाज का आध्यात्मिक पतन जारी था। धार्मिक मान्यताओं के नाम पर अंधविश्वासों को बढ़ावा दिया जा रहा था और सत्ता में बैठे लोग जनता के खून पसीने की कमाई को अय्याशी में लुटा रहे थे। संक्षेप में परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि अगर इमाम हुसैन आंदोलन नहीं करते तो समाज इस्लाम से पहले वाली जाहिलियत की ओर पलट जाता।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस वास्तविकता को समझा और इसे लोगों के लिए उजागर किया। इसे उन्होंने भलाई की सिफारिश करने और बुराई से रोकने के रूप में परिभाषित किया। ये मूल धर्म के सिद्धांतों और शिक्षाओं की व्याख्या और इस्लाम के नाम पर समाज पर शासन करने वाले यजीद की शैतानी प्रवृत्ति का पर्दाफाश था। इमाम ने अलग अलग समय और जगहों पर लोगों को इससे अवगत कराया और उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया। वे फरमाते थे कि अगर किसी मुसलमान को किसी ऐसे शासन का सामना करना पड़े जो ईश्वरीय हराम को हलाल जाने और ईश्वरीय आदेशों को पूर्ण रूप से अनदेखा कर दे, पैगंबर इस्लाम के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से पैरों तले रौंदना शुरू कर दे और लोगों के अधिकारों का खुलकर हनन करे और उनके आत्मसम्मान और मर्यादा का कोई ख्याल न रखे, फिर भी वो अपने व्यवहार या जबान से उसका विरोध न करें, ईश्वर उस व्यक्ति को उसी अत्याचारी शासक के साथ नरक में डाल देगा।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मार्ग को स्पष्ट करते हुए ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई कहते हैं, इस्लाम की महान विरासत को बचाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर मार्ग और शैली को अपना सकते हैं। वो विरासत की जो उनके नाना पिता और उनके अनुयायियों की है, शहीदों के सरदार के जीवन में ये देखा जा सकता है। वे इस्लाम के उद्देश्यों को उजागर करते हैं, लोगों से सही मार्ग पर आगे बढ़ने की सिफारिश करते हैं, इस्लाम की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों के विवेक को जगाते हैं, उन्हें जागृत करते हैं। इमाम हुसैन ने जीवन भर ये कार्य किए हैं। उसके बाद अपनी जान की बाजी लगाकर एक बड़े शैतान का मुकाबला किया। ये है पूर्ण बलिदान। इस तरह से इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाया। उनके इसी कदम ने इस्लाम को सुरक्षित बना दिया।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो चमकता हुआ सूरज हैं जिसने लोगों को सही रास्ता दिखाया और अत्याचार एवं भेदभाव का शिकार लोगों को आज़ादी और स्वाधीनता का मार्ग दिखाया और उनके सामने इंसान के उत्कृष्ट गुणों का आदर्श पेश किया। उन्होंने इंसानों को संदेश दिया कि कभी भी जालिमों एवं अत्याचारियों के सामने सिर न झुकाएं। हाँ दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुल्म और अत्याचार से मुकाबला करके साबित कर दिया कि ईश्वर की प्रसन्नता के लिए काम अंजाम देकर उसे अमरता प्रदान की जा सकती है।
अनोखे रत्न को पहचानना सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है, बल्कि कहा जा सकता है कि हम सामान्य लोग पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे उनके पवित्र परिजनों के महत्व और महानता को कदापि नहीं समझ सकते। इमाम हुसैन की महानता के लिए इतना ही काफ़ी था कि वे पैगंबर इस्लाम के नवासे हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे थे। इस संदर्भ में आयतुल्लाह खामनेई कहते हैं, इमाम हुसैन ने ऐसे घर, ऐसी गोद और ऐसे आध्यात्मिक वातावरण में परवरिश पाई थी।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाज़त दीजिए।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو، اب پیش ہے ہماری آج کی سبھا کا انتیم کارکرم آج کی بات۔
آج کی بات،
श्रोता कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम बात करेंगे अमरीकी अरबपति के विवादित बयान के बारे में जो उन्होंने मोदी सरकार को लेकर दिया है। अमरीका के मशहूर अरबपति जॉर्ज सोरोस ने एक बयान दे दिया जिस पर भारत में हंगामा मच गया। भारत में पहले ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के चलते अडानी साम्राज्य की बुनियादें हिल गईं और प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाने वाले अडानी समूह पर आए संकट का बोझ भारत सरकार पर भी पड़ रहा है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे पर संसद के भीतर और बाहर हमलावर है। इन हालात में सोरोस का बयान आने के बाद भाजपा ने कड़ी नाराजगी जताई है। वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले में जिम्मेदारी का सबूत देते हुए यही स्टैंड लिया कि अमरीकी अरबपति को हस्तक्षेपपूर्ण बयान देने का हक नहीं है। जर्मनी का म्यूनिख रक्षा सम्मेलन एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इवेंट माना जाता है जिसमें विश्व के नेता अपने विचार रखते हैं।
इसी सम्मेलन में जॉर्ज सोरोस ने भी एक बयान दाग दिया। उन्होंने ये कह दिया कि भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है, और मोदी के तेजी से बड़ा नेता बनने की अहम वजह भारतीय मुसलमानों के साथ की गई हिंसा है।
इंडिया मोदी एंड बिजनेस टाइकून अदानी आर क्लोज एलाइज, देयर फेट इज इंटरट्वाइंड। Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door for to push for much needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India.
सोरोस ने कहा कि भारत रूस से कम कीमत पर तेल खरीदता है। जॉर्ज सोरोस के अनुसार गौतम अदानी मामले में मोदी फिलहाल खामोश हैं, लेकिन विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों का उन्हें जवाब देना होगा, इससे सरकार पर उनकी पकड़ कमजोर होगी। उनका यहां तक दावा था कि इससे भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पुनरुत्थान होगा। सोरोस 2020 में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भी कह चुके हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत को हिंदू राष्ट्रवादी देश बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी कश्मीर पर प्रतिबंध लगाकर वहां के लोगों को दंडित कर रहे हैं और नागरिकता कानून के जरिए लाखों मुसलमानों से नागरिकता छीनने की धमकी दे रहे हैं। म्यूनिख सम्मेलन में हालिया बयान आते ही भाजपा की ओर से काफी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जॉर्ज सोरोस का बयान भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बर्बाद करने की घोषणा है। उन्होंने एक साजिश की भी बात कही जिस पर बहुत चर्चा हुई।
जॉर्ज सोरोस, एन इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर, अ मैन हु इज नोन and designated so by a nation as an economic war criminal, has now pronounced his desire to break the Indian democracy. Those who Mr. Soros finds pliable need to know that India has defeated imperialistic designs before and shall do so again. These designs to weaken Indian democracy will be met with the might of India under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.
कांग्रेस पार्टी ने भी सोरोस को टोका कि उन्हें भारत की चुनावी प्रक्रिया के बारे में कोई दखल देने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि पीएम से जुड़ा अदानी घोटाला भारत में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान शुरू करता है या नहीं, ये पूरी तरह कांग्रेस, विपक्ष और हमारी चुनावी प्रक्रिया पर निर्भर है। इसका जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं है। हमारी नेहरूवादी विरासत सुनिश्चित करती है कि उन जैसे लोग हमारे चुनाव परिणाम तय नहीं कर सकते। इस मुद्दे पर राजनीति भी हुई है और अलग अलग दलों ने भाजपा के पिछले कुछ फैसलों को लेकर उसे आईना दिखाने की कोशिश की है। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया कि जॉर्ज सोरोस कौन है और बीजेपी का ट्रोल मंत्रालय उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहा है। वैसे मंत्री जी, भारत के चुनावी प्रक्रिया में इसराइली एजेंसी की दखलअंदाजी पर आप कुछ कहना चाहेंगी? भारत के लोकतंत्र के लिए वो ज्यादा बड़ा खतरा है।
तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने स्मृति ईरानी पर तंज कसते हुए कहा कि आदरणीय कैबिनेट मंत्री ने हर भारतीय से जॉर्ज सोरोस को मुंह तोड़ जवाब देने का आह्वान किया है। आज शाम 6 बजे कृपया थाली पीटें।
दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात। इस कार्यक्रम में हम हर गुरुवार को चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर। कार्यक्रम आज की बात
आलोक जोशी भारत के जाने माने पत्रकार हैं जो बहुत सधी हुई और सब्सटेंशियल टिप्पणी करते हैं। उनका कहना है कि अदानी मसले पर मोदी सरकार की खामोशी की वजह से सोरोस जैसे लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है।
मेरा मानना है कि जॉर्ज सोरोस को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, स्मृति ईरानी कह रही हैं, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। और मुंह तोड़ जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका यह था कि भारत सरकार उस मसले की बहुत तेजी से जांच कराए और उस मसले में दूध का दूध पानी का पानी कर दे, जिस बात को लेकर वो ये सवाल उठा रहे हैं। जॉर्ज सोरोस कौन है, क्या है, कहां से आए, किसको पैसा दिया, ये सारे सवाल क्यों उठ रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आपने एक बुनियादी सवाल का जवाब देने की कोई कोशिश नहीं की। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उस वक्त भी आप हिंडनबर्ग कौन है, हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर है, हिंडनबर्ग कुछ भी हो, उसने आपकी व्यवस्था पर आपकी एक कंपनी और उसके साथ आपके आर्थिक प्रणाली के तमाम संस्थानों के रिश्तों पर सवाल उठाए थे। तो उन सवालों की अगर जांच हो रही होती, जांच हो गई होती, अब तक कुछ सामने आ गया होता, तो फिर आज जॉर्ज सोरोस किस मुंह से ये बात कहते?
स्मृति ईरानी के बयान पर मोदी सरकार के आलोचक माने जाने वाले टीकाकार प्रोफेसर रविकांत कहते हैं कि स्मृति ईरानी को ये साफ करना चाहिए कि सरकार के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है।
जो स्मृति ईरानी का बयान है अगर आप उसको देखें तो दरअसल वो मोदी और अडानी के बचाव में जिस तरह से उतरी है उससे ऐसे लगता है। मैं अभी एक अरुंधति राय का लेख पढ़ रहा था, उनका कहना है कि ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ट्विन टावर पर हमला किया गया है और मोदी और अडानी को बचाने के लिए मोदी जी तिरंगा पहन करके उसका बचाव कर रहे हैं। राष्ट्रवाद के उस पूरे आवरण में इसको दिखाया जा रहा है जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है, जबकि सवाल बेहद बुनियादी है, चाहे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो या बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो या जॉर्ज सोरोस का जो बयान है उनको आप देखें। उन्होंने मोदी के बारे में जो टिप्पणी की है या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी को लेकर के जो बातें आई हैं उसमें बजाय जांच के मोदी जी की सरकार ने क्या किया है कि उन्होंने बीबीसी के दफ्तर पर आईटी की रेट वहां पे हुई है, तो ये दिखाता है कि जो पूरी सरकार है वो इस हमले को, माने अगर वो हमला कह रहे हैं तो इसको वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश कह करके वो आपदा में जो अवसर तलाशने की कोशिश है वो पूरी हो रही है।
भारत के विदेश मंत्री बहुत नपे तुले बयान देने के लिए जाने जाते हैं, मगर हालिया कुछ महीनों में वे अलग अलग मुद्दों पर मुंह तोड़ जवाब देते नजर आए। एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रायसीना डायलॉग के उद्घाटन सत्र के दौरान अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस को बूढ़ा, रईस, हठधर्मी और खतरनाक बताया। जयशंकर ने सोरोस की टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि सोरोस एक बूढ़े, रईस, हठधर्मी व्यक्ति हैं जो न्यूयॉर्क में बैठकर सोचते हैं कि उनके विचारों से पूरी दुनिया की गति तय होनी चाहिए। अगर मैं ठीक से कहूं तो वो बूढ़े, रईस, हठधर्मी और खतरनाक हैं। उन्होंने कहा कि भारत के मतदाताओं ने फैसला किया है कि देश कैसे चलना चाहिए।
Essentially, Mr. Soros said India is a democratic country, but he doesn't think the Prime Minister of India is a Democrat. And by the way, a few years ago, in the same conference, I was there at that time, he actually accused us of planning to strip millions of Muslims of their citizenship, which of course didn't happen. It was a ridiculous suggestion. But you have to understand what this actually means. I could take a view that the individual in question, Mr. Soros, is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. Now, if I could only stop at old, rich, and opinionated, I would put it away. But he is old, rich, opinionated, and dangerous.
भारत के भीतर क्या हालात हैं, मोदी सरकार की नीतियां मुसलमानों, कश्मीर और हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर क्या है, इस पर भारत में लगातार बहस हो रही है। अमरीकी अरबपति का इस मामले में हस्तक्षेप किसी भी भारतीय को उचित नहीं लगेगा। यही वजह है कि भाजपा की नीतियों से गहरी शिकायत रखने वाले भारत के राजनीतिक दलों ने सोरोस के हस्तक्षेप को अनुचित माना है। सोरोस भारत ही नहीं, दूसरे देशों में भी अनेक मौकों पर हस्तक्षेपपूर्ण बयान देते रहे हैं। श्रोताओ, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, आपने अभी कार्यक्रम सुना आज की बात। कार्यक्रम पेश किया अहमद अब्बास ने। ये आपको कैसा लगा कार्यक्रम, इस बारे में आप अपने विचार हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट है partstoday.ir/hi। व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 0098903506542। तो दोस्तों, इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी से अब हम अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि, खुदा हाफिज। Oh,